हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद को अपनी केयर करते देखकर शिवांशा के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर ग्रो होने लगा था। इतने दिनों में पहली बार शिवांशा चैन की नींद सोई थी, जहां उसे अंकुश के सपनों के बजाय वेद को अपने सपने में देखा था। उसके सपनों में उन दोनों का लम्हा काफी खूबसूरत था। नींद से जागने के बाद भी शिवांशा इन सपनों में खोई हुई थी। वेद ने उसे तैयार होकर नीचे आने को कहा था, लेकिन वो वेद मम्मी पापा की फोटो के सामने खड़ी उन्हें देख रही थी। शिवांशा को उनका चेहरा जाना पहचाना लगा। वो अपना हाथ तस्वीर पर रखती उससे पहले वेद ने उसे बहुत बुरी तरह से डांटा। कुछ ही देर में शिवांशा के सपने चूर चूर हो गए थे और उसे समझ आ गया था कि वेद और वो कभी सपने में भी एक नहीं हो सकते हैं। उनके बीच सिर्फ उम्र का ही फासला नहीं था, बल्कि एक नफरत की गहरी खाई थी जो कभी नहीं भरने वाली थी। वेद ने शिवांशा को अपने कमरे से निकाल दिया था। उसे बालकनी अच्छी लगती थी, तो वेद ने उसे बालकनी साइड का कमरा दे दिया, जिसका एक दरवाज़ा बालकनी में खुलता था। वेद तो शिवांशा को डांटने के बाद वहां से चला गया था, लेकिन शिवांशा उस कमरे में बैठकर रोए जा रही थी। सच ही तो कहते हैं वो, बेवकूफ हूं मैं, सच मेरी आंखों के सामने है, फिर भी पता नहीं क्यों उम्मीद लगा ली। दादू ने उनके साथ इतना सब कुछ किया, बदला लेने के लिए उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। आज मेरी जो जिंदगी है वो उन्हीं की वजह से है, वरना मैं भी अपने परिवार के साथ एक सेफ लाइफ बिता रही होती, फिर मुझे उनसे नफरत क्यों नहीं होती है। शिवांशा रोते हुए खुद को कोस रही थी। वहीं पूरी चौहान फैमिली हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट टेबल पर मौजूद थी, सिवाय शिवांशा के। शिवांशा को वहां पर आए हुए लगभग 10 दिन हो चुके थे, लेकिन इतने दिनों में उसने एक बार भी उनके साथ खाना नहीं खाया था। नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर जब शिवांशा नहीं पहुंची, तो आराध्या ने सबसे पहले उसी के बारे में पूछा, भाई भाभी कहाँ रह गईं? मुझे लगा आज वो हमारे साथ खाना खाएगी। वेद ने साफ लफ्जों में शिवांशा को नीचे आने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं आई तो वेद की गुस्से में मुट्ठी कस गई थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को एक और झूठ बोलने के लिए तैयार किया। वो रात को सो नहीं पाई थी, इस वजह से अब तक उठी नहीं है, ऊपर से पार्टी की वजह से थक भी गई थी। तुम ऐसा करना, रानी को बोल देना, वो ब्रेकफास्ट लेकर थोड़ी देर बाद उसके कमरे में चली जाएगी, वेद ने जवाब दिया। चेहरे से वेद भी थोड़ा थका हुआ लग रहा था। उसने अपनी तरफ से परफेक्ट बहाना बनाया था, लेकिन वेद की बात खत्म होते ही आराध्या और अक्षत के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी। कल रात भी वेद शिवांशा को लेकर जल्दी निकला था और अब देर से सोने का बहाना बना रहा था। वो इसका कुछ और ही मतलब निकाल रहे थे। अक्षत ने हल्की खांसी ली और फिर वेद से बोला, अच्छा भाई, आपको नहीं लगता कि आपको एक ब्रेक की जरूरत है? वेद ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसने तुरंत अपनी नजरें नीची कर ली। वही वंश समझ गया था कि अक्षत क्या कहना चाह रहा है। उसके इशारे से अक्षत को चुप रहने को कहा, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। अच्छा वंश भैया, शादी के बाद आप आराध्या भाभी के साथ स्विट्जरलैंड गए थे, बहुत ही खूबसूरत जगह है ना? क्या कहते हो, वेद भाई और शिवांशा भाभी को भी वहीं जाना चाहिए ना हनीमून के लिए? अक्षत ने बात को गोल गोल घुमाने के बाद आखिर पॉइंट की बात कर ही दी थी। नव्यांशी उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। उसने उसे डांटते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या, ये क्या बोले जा रहे हो? कम से कम भाई के ओहदे का तो ख्याल कर लो, तुम्हें उन्हें एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं उन्हें कहाँ कब किसके साथ जाना चाहिए। उन सबको लगा कि नव्यांशी के बाद वेद भी उसे डांटेगा, लेकिन वेद बिल्कुल शांत था। अक्षत ने मन ही मन राहत की सांस लेकर कहा, थैंक गॉड बच गए, छोटी हिटलर ने ही डांटकर काम निकाल दिया, वरना मुझे तो लगा था कि आज मेरे प्राण निकलने वाले हैं, आगे से सोच समझकर बोलूंगा। आराध्या को अक्षत की हालत देखकर हंसी आ रही थी। इतने लोगों में कम से कम उसमें हिम्मत तो थी जो वो वेद को हनीमून जाने की बात कह सके। ब्रेकफास्ट होते हुए भी आराध्या ने वेद से कहा, अच्छा भाई, मैं आज के लिए घर पर ही हूँ तो भाभी के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी, क्यों ना हम शॉपिंग के लिए जाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेद ने साफ मना कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि शिवांशा उसके परिवार के साथ ज्यादा घुले मिले, उसे वो लोग गलत ना समझें, ये सोचकर वेद ने बात को संभालते हुए कहा, तुम्हें कुछ खरीदना है तो तुम जा सकती हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही उसे शॉपिंग के लिए पूछ चुका हूँ। एक चीज उन सबने महसूस की थी कि वेद शिवांशा को हो सके उतना उनसे दूर रखने की कोशिश करता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो खाने की टेबल पर आती है या नहीं। नव्यांशी ने वेद के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपने मन में कहा, भाई कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन दिल से यही लगता है कि उनका उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कल रात डांस भी नहीं किया था, हनीमून की बात को भी टाल गए, अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑफिस में बिताते हैं। पहले तो फिर भी फैमिली के लिए टाइम पर घर आ जाते थे, लेकिन अब तो इनका रूटीन ही चेंज हो गया है।
नव्यांशी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी वेद ने अक्षत की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, और तुम अक्षत, मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया है घूमने के लिए, मेरे साथ ऑफिस चलो, आज से तुम एज अ इंटर्न ज्वाइन कर रहे हो। लेकिन भाई, अक्षत ने उसे मना करना चाहा, लेकिन वेद ने उसकी तरफ देखकर घूरते हुए सिर हिलाया तो उसने चुपचाप हाँ कह दी थी। अब अक्षत को भी समझ आ गया था कि वेद ने पहले उसे क्यों नहीं डांटा, उसे उसके किए की सजा बाद में जो मिलनी थी। कुछ ही देर में वो सब वहां से निकल चुके थे। आराध्या अकेले घर पर थी तो उसने शिवांशा से बात करने का सोचा। आराध्या ऊपर कमरे में खाने के साथ गई तो शिवांशा बालकनी में खड़ी हुई थी। भाभी, आराध्या ने पीछे से आवाज लगाई तो शिवांशा ने उसकी तरफ पलट कर देखा। शिवांशा ने इस वक्त बिल्कुल सिंपल स्काई ब्लू कलर की शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी, जबकि नॉर्मल डेज में वो थोड़ी हैवी साड़ी पहनती थी। ऐसा उसने अपने रैशेस की वजह से किया था, जो कि बढ़ते जा रहे थे। शिवांशा की बॉडी पर लाल निशान देखकर आराध्या घबराकर उसके पास आई और बोली, हे भगवान, आपकी बॉडी पर तो ये रैश बढ़ते जा रहे हैं, भाभी आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब समझ में आ रहा है कि भाई ने आपके थके होने का बहाना क्यों बनाया था। चलिए हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। आराध्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाना चाहा, लेकिन शिवांशा अपनी जगह पर ही खड़ी थी। उसने ना में सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उन्होंने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने कहा ये नॉर्मल है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, हम जानते हैं कि नॉर्मल है और ठीक भी हो जाएगा, लेकिन मेडिसिन लेना भी जरूरी है, आपको जलन नहीं हो रही क्या? आराध्या ने हैरानी जताते हुए पूछा। शिवांशा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मन में सिल हिला दिया था। भले ही वो आराध्या को कितना भी मना करे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि उसकी क्या हालत हो रही है। जलन के मारे शिवांशा की आंखों में हल्की नमी थी। कुछ घंटे पहले अगर कोई उसका चेहरा देखता तो उसे यकीन नहीं होता ये वही शिवांशा है जो बुझी हुई रहती है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वेद की करीबी के एहसास भर से उसका चेहरा खिल गया था, लेकिन वापस उसके चेहरे पर वही मायूसी थी, जीने की कोई उम्मीद नहीं। आप परेशान लग रही हैं भाभी, सब ठीक है ना? आराध्या ने उसके दुख को बांटने के लिए पूछा। शिवांशा हमेशा से ज्यादा परेशान लग रही थी।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे नींद आ रही है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा सकती हूँ? शिवांशा ने अपने दर्द को छुपाते हुए कहा। ठीक है, पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद सो जाएंगी, और आप बाहर नहीं जाना चाहती तो मैं डॉक्टर से बात करके कोई मेडिसिन पूछ लेती हूँ, आराध्या ने काफी केयरिंग वे में कहा। मुझे भूख नहीं है, शिवांशा बोली, और फिर आराध्या को वहीं छोड़कर उसे दिखाने के लिए वेद के कमरे में चली गई थी। वेद ने बस उसे अपने सामने आने से मना किया था, उसकी एब्सेंस में तो वो वेद के कमरे में जा ही सकती थी। ये सोचकर शिवांशा अकेले जाकर लेट गई थी। ना चाहते हुए भी उसका रोना कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो फिर से रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ शिवांशा को इतना परेशान देखकर आराध्या तुरंत नीचे आई और अक्षत को कॉल किया। आज भाभी बहुत परेशान लग रही थी, क्या भाई का भी मूड खराब है अक्षत? आराध्या ने पूछा। हाँ, मिजाज तो इधर भी बिगड़े हुए लग रहे हैं, सब पर चिल्ला रहे हैं, जरूर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा। आप भाभी से बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भाई से बात की तो मेरा वही हाल होगा जो सुबह हुआ था, बेवजह मुझे यहाँ लाकर पटक दिया है, अक्षत ने बेचारों सा मुंह बनाकर कहा। भाई के साथ रहते रहते वो भी थोड़ा उनकी तरह होने लगी है, मैंने पूछा था लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। खैर छोड़ो, उम्मीद है इन दोनों का झगड़ा जल्द से जल्द दूर हो जाए, आराध्या ने जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया। जो बात वो नव्यांशी या वंश से नहीं कह सकती थी, वो अक्षत से कहने में कंफर्टेबल थी। आराध्या ने हमेशा यही सोचा था कि जब भी वेद की शादी होगी तो उसकी पत्नी को वो बड़ी बहन की तरह रखेगी। शिवांशा उसकी छोटी थी तो वो उसे अपनी छोटी बहन मानती थी, उसकी बहुत परवाह भी करती थी, लेकिन वेद की वजह से शिवांशा चाहकर भी किसी से खुलकर बात नहीं कर सकती थी। अक्षत से बात करने के बाद आराध्या ने डॉक्टर से बात करके शिवांशा के लिए दवाई मंगाई। दवाई लेने के बहाने वो कमरे में गई तो शिवांशा सूई हुई थी। शिवांशा बेड के बजाय काउच पर लेटी थी। ये देखकर आराध्या के मन में थोड़ा डाउट हुआ। हे भगवान, ये सोफे पर क्यों सो रही है? कहीं नव्यांशी ने देख लिया तो उसके दिमाग में 100 ख्याल आएंगे। भाई और भाभी के बीच में क्या अब तक कोई रिश्ता नहीं बना है? क्या इसी वजह से तो भाई चिढ़ नहीं रहे थे? अब मैं भाभी से इस बारे में कैसे बात करूं? आराध्या सोचते हुए कन्फ्यूज हो गई थी। फिलहाल शिवांशा सोई हुई थी, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसने चुपचाप दवाई नोट के साथ वहां पर रखी और फिर कमरे से बाहर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ नव्यांशी इस वक्त एक मीटिंग के सिलसिले में क्लाइंट से मिलने के लिए होटल आई हुई थी। उसका क्लाइंट आने में देर लग रही थी, तभी उसकी नज़र मनन और अरमान पर गई। मनन के जिद करने पर अरमान उसे वहां लेकर आया था।
तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें यहाँ लेकर तो आ गया हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अनहेल्दी खाना खाओ। बस एक ही चीज़ ऑर्डर करना अलाउड होगा, बाकी मेरे हिसाब से खाना खाओगे तुम। मनन कुछ कहता उससे पहले नव्यांशी उनके पास आते हुए बोली, अगर इतनी ही परवाह है तो इसे यहाँ लेकर ही क्यों आए हो? नव्यांशी को उनके बीच देखकर अरमान खा जाने वाली निगाहों से उसे घूर रहा था। वो उसे मुंह तोड़ जवाब देने ही वाला था कि नव्यांशी मनन की तरफ पलटकर बोली, तुम इसे छोड़ो, मुझे बताओ तुम क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करती हूँ। मुझे गंदे लोगों से कुछ नहीं लेना है, चलो अरमान यहाँ से चलते हैं, मनन ने पूरे एटीट्यूड से अपना चश्मा ऊपर करके कहा। उसने अरमान का हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगा। अचानक अरमान के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभर आई थी। उसे नव्यांशी को जवाब नहीं देना पड़ा था और मनन नहीं संभाल लिया था। अरमान के चेहरे पर स्माइल देखकर नव्यांशी ने चिढ़ते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? हाँ आ रही है तो, अरमान भौहें चढ़ाकर बोला, इतनी फ्री हो क्या जो किसी के बीच में जाकर बैठ जाती हो, उसे फ्री का खाना ऑफर करती हूँ? ऐसा करो, किसी ऑर्फनेज चली जाओ, कुछ लोगों का भला हो जाएगा और तुम्हारा भी शौक पूरा हो जाएगा। हाँ आजकल मेरा बहुत मन करता है कि मैं दूसरों की हेल्प करूं, तभी यहाँ आ गई, नव्यांशी ने सिर हिलाकर सस्पिशियस वे में कहा। तो अरमान उसकी तरफ आगे झुककर देखने लगा। वो समझ गया था कि नव्यांशी ऐसे ही उसके पास नहीं आई होगी। क्या चाहती हो तुम? अरमान ने सीधे सीधे पूछा। सच जानना चाहती हूँ, नव्यांशी बोली। उसने कुछ पल रुककर सिर हिलाकर कहा, शिवांशा का क्या रिश्ता है आपके साथ? मेरे भाई उससे कैसे मिले? तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो मेरे पास आ गई? ईजी टारगेट लगा मैं तुम्हें मिस चौहान, जाकर उसी से पूछो जो शिवांशा को अपने साथ लेकर आया था, या हिम्मत नहीं है? अरमान ने मॉकिंग स्माइल के साथ कहा। उसके मना करने पर नव्यांशी गुस्से में बोली, यू? मनन ने तो उसकी बात भी पूरी नहीं होने दी। वो बीच में ही अरमान को खींचते हुए बोला, चलो अरमान बाहर चलकर स्ट्रीट फूड खाते हैं, अब मेरा मूड ऑफ हो गया है, तुम कहो तो मैं घर का खाना खाने के लिए भी तैयार हूँ। मनन अरमान को खींचते हुए वहां से ले गया था। नव्यांशी को लगा कि वो अरमान से सब कुछ पता लगा लेंगी, लेकिन अरमान ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था जिससे शिवांशा की जिंदगी खतरे में आए। फिलहाल भले ही वो वेद सिंह चौहान के साथ था, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि राजावत फैमिली से ज्यादा सुरक्षित वो वेद के साथ है। वैसे भी अंकुश की गिरफ्तारी के बाद चौहान फैमिली का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, मैं सच का पता लगा कर रहूंगी, आखिर मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है, नव्यांशी ने दांत पीसते हुए कहा। नव्यांशी अरमान पर गुस्सा कर रही थी तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन टोन आया। वो नोटिफिकेशन सिर्फ उसके पास नहीं पूरी चौहान फैमिली के पास आया था। सामान्य दिनों में उन सबकी आंखें इमोशंस छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उस मैसेज को देखकर सबकी पलकें भीगने लगी थीं, यहां तक कि वेद की भी।